हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 386। अजय ये सवाल करता हुआ वहां पर अंदर आया और कभी होटल के मैनेजर ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? इतना सब ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें इस बारे में क्या पता है? मैनेजर ने उसके आगे आते हुए सवाल किया तो अजय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ आईडी कार्ड से थमा दिया और वहां से आगे बढ़ते हुए बोला, बताओ रागिनी, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? जानबूझकर किया है ना? सर, मैं तुम पर भरोसा किया और तुमने ये सिला दिया उनके भरोसे का। क्या मिला तुम्हें उनका नाम मीडिया में इस तरह से खराब करके? उसके सवाल सुनकर रागिनी ने जैसे तैसे अपनी सफाई में कहा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो और तुम्हें इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि अक्षत ने किसी को भी नहीं बताया अब तक इस बारे में, और इसीलिए तुम मुझे गलत। रागिनी को बीच में ही टोकते हुए मनस्वी ने कहा, कौन किसको क्या समझ रहा है ये हम बाद में डिसाइड। पहले सवाल इतने बड़े एक्टर और मेरे होटल की रेपुटेशन का है, और इसे हुआ क्या है ये बताओ पहले तुम ही, है ना? कल रात से इसके साथ तो जरूर तुमने कुछ किया होगा। और मनस्वी को पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा शक रागिनी पर ही है और रागिनी से उसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। रागिनी ने तुरंत ही अपनी सफाई में ये सब कुछ बोला, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं भला क्या कर सकती हूँ? अब मैंने तुम्हें बताया ना, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है, लेकिन हम सीक्रेट रिलेशनशिप में थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। बस शायद इसी बात के स्ट्रेस में अक्षत ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली कल और फिर वो होश में नहीं था, तो मैं उसे यहाँ सबसे नज़दीक के होटल में लेकर आ गई, क्योंकि हम दोनों के ही घर यहाँ से काफ़ी दूर हैं। अजय ने लगभग उसे डांटते हुए कहा, झूठ बोलना बंद करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है और सर को ये बात पहले से ही पता थी, तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो कि उन्हें कल ही इस बारे में पता चला? उन दोनों की बातें सुनकर मनस्वी और वहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग काफ़ी ज्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तभी वहाँ पर एक साइड से डॉक्टर के साथ अनय वहाँ पर अंदर आया और बोला, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारा झूठ दो मिनट में ही पकड़ा जाएगा, बस अक्षत के होश में आने भर की देर है। अनय की तरफ गुस्से से देखते हुए रागिनी ने कहा, तुम कौन हो और भला तुम जानते ही क्या हो अक्षत और मेरी लाइफ के बारे में? हम दोनों एक दूसरे से प्यार। मनस्वी उसकी बात काटते हुए बीच में ही बोल पड़ी, प्यार तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा तुम्हारी आंखों में, उसके लिए प्यार तो छोड़ो, झूठी फिक्र तक नजर नहीं आ रही है। वो ऐसे बेहोश पड़ा है और तुम खुद को सही साबित करने पर तुली हुई हो, जबकि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम्हें इस वक्त उसकी फिक्र होती, अपनी नहीं। मनस्वी ने ये बात कही तो अनय कुछ पल के लिए बिना पल के झपकाए उसकी तरफ ही देखने लगा। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुना। उसे मनस्वी के मुंह से ऐसी बातों की उम्मीद कभी भी बिल्कुल नहीं होती, बस इसी ने उसे थोड़ा सा सदमा लगा। लेकिन तब तक डॉक्टर अक्षत को चेक करने के लिए आगे आए और हम सबकी बातें सुनकर रागिनी भी अक्षत की फिक्र करने का नाटक करती हुई उसके पास ही आकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ना ही वाली थी, तभी अजय ने वहां पर आते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब है ना, वो चेक कर लेंगे, तुम थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाओ। अजय की ये बात सुनकर रागिनी ने उसकी तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया। डॉक्टर ने अक्षत को चेक किया और उसे एक इंजेक्शन दे दिया। सभी वहां पर ये जानने के लिए खड़े हैं कि आखिर अक्षत को क्या हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला और अपना काम खत्म करने के बाद डॉक्टर ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, इनकी फैमिली में से कोई है क्या यहाँ पर? मुझे उससे बात करनी है। डॉक्टर के इस तरह फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछने के बाद सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि फिलहाल कोई भी वहां पर अक्षत की सगामा मिली तो नहीं है, और रागिनी जो कि इतनी देर से उसे प्यार करने का दावा करते हुए खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही थी, वो भी खुद को अक्षत की फैमिली नहीं बोल पाई वहां पर सबके सामने। आखिरकार अजय ने ही डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या हुआ डॉक्टर, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? और सर की फैमिली मेंबर्स में से तो इस वक्त कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैंने उनके भाई को फोन कर दिया है, लेकिन मैं उनका असिस्टेंट हूँ, आप मुझे बता सकते हैं? डॉक्टर ने काफी सीरियस आवाज में उसकी बात का जवाब दिया, किसी चीज के हाई ओवरडोज की वजह से ही मिस्टर कपूर बेहोश हुए हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि उनकी बात को बीच में काटते हुए अनय हैरानी से बोल पड़ा, क्या क्या इसे कोई ड्रग दी गई है डॉक्टर? डॉक्टर ने भी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहा, पता नहीं, कोई ड्रग है, दवाई है, स्लीपिंग पिल्स या फिर अल्कोहल, ये तो ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, हमें इनके कुछ टेस्ट करने होंगे, बस इसीलिए मैं फैमिली मेंबर के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उनकी परमिशन भी चाहिए होती है, जब तक होश में नहीं आ जाते फैमिली मेंबर की जगह पर तो उनमें से कोई भी साइन नहीं कर सकता, इसीलिए सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अजय के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या आप कुछ देर वेटिंग रूम में इंतजार कर सकते हैं? मैं अभी वहां पर आता हूं आपसे बात करने के लिए। ओके, आई एम वेटिंग। इतना बोला डॉक्टर ने अपना सामान उठाया और वहां से बाहर निकल गए। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद अजय ने एक नज़र रागिनी की तरफ देखा, जो कि वहां पर थोड़ी दूर पर खड़ी हुई सी कुछ सोच रही है और नर्वसनेस में अपने नाखून भी कुतर रही है। अजय उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, रागिनी देखो, अगर इन सब में मुझे कहीं भी पता चला ना कि तुम्हारा हाथ है, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला और तुम्हारा जो बचा खुचा करियर है ना, वो भी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि तुम बता नहीं रही हो क्या हुआ है सर को। रागिनी उसकी ऐसी बात सुनकर थोड़ा सा घबराकर जल्दी से पीछे हट गई और इधर उधर देखते हुए सोचने लगी कि उसकी बात का क्या जवाब दे, लेकिन तभी दरवाजे से अंदर आते हुए किसी और ने अजय की ये बात सुन ली और वो थोड़ा परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ है भाई को? इतना बोलते हुए वो दरवाजे से अंदर आया तो सबकी ही नज़र उस तरफ हो गई और विवान को वहां पर देखकर रागिनी की आंखें तो हैरानी से खुली की खुली रह गई। उसे इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि विवान अक्षत का भाई हो सकता है।
फिलहाल वहां पर मौजूद अजय और अनय के अलावा किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। विवान के वहां पर आते ही इस बारे में तुरंत ही वहां पर खुसुर-पुसुर चालू हो गई, क्योंकि विवान को उसकी कुछ फिल्मों की वजह से वहां पर मौजूद काफी लोग जानते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि अक्षत और विवान दोनों भाई हैं। मनस्वी ने विवान की तरफ आगे आते हुए बोला, तुम सच में इसके भाई हो सगे या फिर कोई फिल्म वाला रिश्ता निभाने चले आए हो? मनस्वी ने अपने हमेशा वाले एटीट्यूड में उससे ये सवाल किया, तो अनय तुरंत ही वहां पर आते हुए मनस्वी से धीमी आवाज में बोला, क्या कर रही हो तुम? और हाँ, ये उसका सगा भाई ही है, मुझे पता है इसके बारे में। वो सुनैना जब हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, यहाँ पर आया था सुनैना की बहन के साथ, कई बार देखा मैंने इसे।
अनय की बात सुनकर मनस्वी ने एक नज़र उठाकर विवान को ऊपर से नीचे देखा, लेकिन विवान अब तक वहां से आगे आ जाए और वहां पर बेहोश अक्षत की तरफ बढ़ गया है, और उसने रास्ते में रागिनी को भी खड़ा हुआ देखा, लेकिन उसे पूरी तरह से उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि बहुत गुस्सा आ रहा है रागिनी पर। वो उसे काफ़ी कुछ उल्टा सीधा सुनाना चाहता है, लेकिन अभी सीधी तरह से उसे कुछ भी बोलकर वो अपने भाई का बनाया बनाया प्लान खराब नहीं करना चाहता। इसलिए बाहर से आगे आता हुआ विवान सीधे अजय के पास पहुंचा और उससे ही कुछ बात करने लगा। वो दोनों काफी धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, जिससे कि उनके बीच हो रही बात किसी और को सुनाई नहीं दे रही है। अनय ने भी मनस्वी के पास आते हुए कहा, चलो ये सब खत्म करो, यहाँ पर कब तक भीड़ लगी रहेगी, और वैसे भी डॉक्टर चेक करके गए हैं, अभी होश आ जाएगा उस एक्टर को, और बाहर भी मीडिया है, वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही, मनस्वी कुछ करो इस बारे में। अनय की बात सुनकर मनस्वी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर अपनी मैनेजर की तरफ देखती हुई बोली, जाओ यहाँ से और बाहर से मीडिया को हटने के लिए बोलो, और अगर वो ना हटे तो बोलना कि अक्षत को यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया गया है। मैनेजर ने तुरंत ही एक और सवाल किया, अरे लेकिन मैडम वो हमारी बात का भरोसा नहीं करेंगे, उन्होंने यहाँ से किसी को भी बाहर निकलते नहीं देखा। उन्होंने निकलते हुए नहीं देखा तो फिर तुम निकलते हुए दिखा देना, इतना तो कर ही सकते हो ना। मनस्वी की ये बात सुनकर मैनेजर ने चुपचाप धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने बाकी स्टाफ को लेकर वहां से चला गया। अब वहां पर सिर्फ अनय, मनस्वी, मनस्वी का एक बॉडीगार्ड, रूबी, विवान, अजय, रागिनी और सोफे पर बेहोश लेटा हुआ अक्षत ही बचे हैं। इतने लोगों के अलावा वहां पर अब और कोई भी नहीं है। तभी मनस्वी ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, और उसका इशारा समझते हुए मनस्वी के बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर अक्षत को बड़े ही आराम से अपने गोद में उठा लिया, क्योंकि वो बॉडीगार्ड काफी लंबा चौड़ा है, एकदम किसी बाउंसर की तरह, और वो मनस्वी का पर्सनल बॉडीगार्ड है। उसे पता है मनस्वी उसे अक्षत को कहाँ लेकर जाने के लिए बोल रही है, इसलिए वो अक्षत को लेकर वहां से सीधा बाहर की तरफ ही चला गया। अरे रुको तो, ये मेरे भाई को लेकर कहाँ जा रहे? अक्षत को इस तरह से उठाकर वहां से ले जाते हुए देखकर वहां खड़ा विवान उसके पीछे आते हुए चिल्लाया। अनय ने उसकी तरफ आते हुए कहा, तुम अपने भाई की सेफ्टी चाहते हो या नहीं? अनय की ये बात सुनकर विवान ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया, तो अनय भी मुस्कुरा कर बोला, हम पर भरोसा करो, वो हमारे साथ सेफ रहेगा, और अभी कुछ देर बाद तुम दोनों भी वहां पर ही आ जाना, लेकिन पहले डॉक्टर से मिल लो जाकर। इतना बोलकर अनय भी मनस्वी के पीछे वहां से बाहर चला गया, और वो बॉडीगार्ड के साथ ही थी। रूबी भी उन दोनों के पीछे वहां से चली गई, और रागिनी भी उनके पीछे जाने को हुई तो अजय उसके रास्ते में आकर उसे रोकते हुए बोला, तुम नहीं जाओगी अक्षत सर के आसपास जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, और वो खुद ही तुम्हें उनके पास आने के लिए नहीं कहते। क्रमशः